مشکل الفاظ کی وضاحت. آپ دیکھیے کہ سورت یوسف جو ہے اس میں آپ بہت سے نئے الفاظ دیکھیں گی اور بہت سے الفاظ مشکل بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک دلچسپ چیز ہے کیونکہ انسان جب چیلنج قبول کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور سیکھتا ہے، تو آپ ذہنی طور پر ابھی سے تیار ہو جائیں. اور اس کا جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ ہے مبین. مبین جو ہے اس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں، جدائی، بودھ یعنی دور، اور واضح. تو کتاب مبین یہاں پر کہا گیا ہے ایسی کتاب جس میں ہدایت سے متعلق ہر چیز پوری وضاحت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور جو بھی اس میں امر اور نہی کے عوامر ہیں، جو بھی جو ہے وہ حلال اور حرام کی باؤنڈریز ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات انسان کی ہدایت کے لیے دی ہیں، ساری کی ساری جو ہے وہ واضح ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض رنگ ہوتے ہیں بڑے نمایاں ہوتے ہیں، کبھی آپ آسمان کو ہی دیکھیں کہ نیلا رنگ پورا نمایاں ہوتا ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں تو پوری طرح نمایاں نہیں ہوتا نا. تو مبین جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ پورا نمایاں، واضح ہونا. پھر ہے انا انزلناہ قرآنن. قرآنن آپ کو پتہ ہی، آپ پڑھ ہی چکی پہلے بھی کہ قرآن جو ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ قاف را حمزہ. اور پڑھنا سے یہ اسم مبالغہ ہے، بار بار کثرت سے ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب قرآنن. اور آپ دیکھیں آپ نے قروء بھی پڑھا تھا نا پیچھے، اور قروء جو ہے وہ اس میں طہر بھی پایا جاتا ہے اور حیض بھی پایا جاتا ہے. بعض لوگ قروء کہتے ہیں جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اس کو، اور بعض کہتے ہیں کہ حیض کے آنے کو قروء، تو پھر لوگ اس کو ذویل اجداد میں سے بھی کہتے ہیں. تو اس میں گویا کہ دو معنی جمع ہو گئے نا. تو قرآن کیا ہے؟ یہ جمع کی ہوئی کتاب ہے. اس میں جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، کلمات ہیں، آیات ہیں، وہ جمع کی ہوئی ہیں. اور اللہ نے نازل کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. اور قرآن کے لیے قرآن مجید میں فرقان بھی آیا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. قرآن کے لیے ذکر کا لفظ بھی آیا ہے اور تذکرہ بھی آیا ہے. اس کے علاوہ کتاب مبین یہاں پہ جو ہے وہ کتاب مبین، قرآن مجید کا نام کیا بتایا گیا یہاں پہ؟ کتاب مبین ہے یہ. اور اسی طرح احسن الحدیث بھی کہا گیا قرآن کو، یہ بھی اس کا ایک نام ہے، اللہ نزل احسن الحدیث. اور عربین، عین را با، ویسے تو عرب ہے نا، تو عربی زبان لغت کے اعتبار سے کیا ہے اگر ہم اس کے معنی دیکھیں، تو یہ وہ کتاب ہے جو کہ عربی زبان میں نازل کی گئی. تاکلون عقل سے ہے، سوجھ بوجھ رکھنا، تو تاکلون تم عقل رکھو، شاید کہ تم جو ہے وہ سمجھو. نقصو قاف سواد سواد، اور قاف سواد سواد جو ہے قصہ گوئی. ایک ہوتا ہے کہ لوگ خود سے اپنے تخیل سے کہانیاں لکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ تاریخ کی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کھوج لگا کر آپ اس تک پہنچتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ قصہ ہے، یہ جو تاریخ کا واقعہ ہے. اور قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کے نام سے یاد کرتا ہے. احسن کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے. یہاں پہ آپ کو نون پر پیش نظر نہیں آ رہی، تبدیلی آ چکی ہے. اور احسن القصص قصوں میں سے بہترین قصہ، واقعات میں سے بہترین واقعہ. اوحینا ہم نے وحی کی. اور آپ کو پتہ ہے وحی کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اشارہ کرنا، اور وہ اشارہ شہد کی مکھی کو بھی کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ کوئی نبی نہیں تھیں، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈال دو، ہے نا. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک وحی کی قسم یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ वो जो आप पढ़ भी चुकी हैं कि वही जो है वो बकायदा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई और बाकी अम्बिया को दी गई, कभी वो घंटी की आवाज में, कभी फरिश्ता जाहिरी तौर पर नजर आता है, कभी नजर नहीं आता ना, जब नजर नहीं आता तो वही की बड़ी मुश्किल किस्म होती है। तो बहरहाल एक उसके जो है वो लुगवी मानी है, एक उसके शरई मानी है, इस्तलाही मानी है। फिर इसके बाद देखें कि जो है वो गाफिलीन, गाफिलीन जो है आमतौर पे लोग समझते हैं कि गाफिल के मानी जो है वो गुमराह भी समझते हैं ना लोग, लेकिन गाफिल होना इससे मुराद है कि ना वाकिफ है राह। जैसे दालीन को बाज लोग जैसे समझते हैं ना कि वो गुमराह है, आप सूरत फातिहा पढ़ चुकी गुमराह है, लेकिन दालीन के एक मानी ये भी होते हैं कि किसी बात का पता ना होना। जैसे सूरत दुहा में क्या है आयत, वो जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हैं कि जब मैंने तुझे जो है वो गुमशुदा राह पाया तो तुझे रास्ता दिखाया। तो शाबाश आपने सही बताया कि वह वजदा का दालन फहदा, कि तुम्हें जो है वो नवाकिफ राह पाया तो तुझे हदायत दे दी। वहां पे ये मानी नहीं है कि तुझे जो है वो गुमराह पाया, तुझे सही रास्ते का पता नहीं था। तो गुमराह आमतौर पे हमारे यहाँ जो है वो दलालत से मुराद गुमराही सिर्फ मुराद लिया जाता है, तो वो मानी भी मुराद होते हैं। तो यहाँ पे जो है गाफिलीन भी क्या है, बेखबर होना, गाफिल होना, कि जैसे किसी चीज का जो है वो पता ना हो, ना वाकफियत हो। फिर है यूसुफ, यूसुफ जो लफ्ज है इसका रूटवर्ड है हमजा सीन फा, और फा के साथ छोटी या लिख लें और फा के ऊपर अलिफ डाल दें। तो कहते हैं कि ये अफसोस और गम के मिले जुले जज्बात को कहते हैं यूसुफ। यूसुफ के मानी क्या है, गम और अफसोस के मिले जुले जज्बात, या असफा आगे जाके आप पढ़ेंगे याकूब अलैहिस्सलाम ये भी कहते हैं। तो या अबाती, और आप देखें इज क़ाल यूसुफ ले अबीही या अबती, तो ले अबीही, ले अबीही और या अबती में से आप रूट वर्ड ढूंढें तो क्या है, हमजा बा ता, है ना। तो वैसे तो कहना चाहिए हमजा और बा अबुन, है ना। तो इसका रूट वर्ड क्या है, हमजा और बा अबुन, और अब्बा भी बाज लोग कहते हैं, अब्बू बाज लोग कहते हैं, और अबी के मानी है मेरा बाप, है ना। और यहाँ पे है ले अभी ही, अपने बाप के लिए, है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, क्या कहा, या अबती ए मेरे बाप। अब वो ये भी तो कह सकते थे ना या अभी, तो अबती क्यों कहा। असल में कहते हैं कि ये एहतराम इज्जत के लिए बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपने बाप को मुखातिब किया, ज्यादा प्यार के साथ ना, जैसे रिस्पेक्ट के लिए। और या अभी भी तो कह सकते थे, या अब भी तो कह सकते थे, या अब्बाती है मेरे अब्बा जान। और आप देखें कि यहाँ पे या जो है ना ये आया है, और या जो है ये हर्फे नदा है, हर्फे हरूफ निदा होते हैं कुछ, और वो हरूफ जो किसी को पुकारने या बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाए उनको हरूफ निदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए उसको मनादा कहते हैं। तो यहां पे मनादा कौन है, अबी या अबती जो है ना, या हर्फे निदा है और अबती जो है ये मनादा है। अच्छा अब आप देखें कि या रजुलू, या क्या है हर्फे निदा और रजुलू क्या है मनादा है। या के बाद आने वाले मनादा पर अलिफ लाम नहीं आता, जब या आता है ना तो उसके बाद जो है वो फिर उसके मनादा पर अलिफ लाम नहीं आता, ऐसे नहीं आएगा या अर रजुलू नहीं आएगा, ये जबान पर ना भारी है। तो जबान जो भी लुगत होती है, जबाने होती है ना, वो आम फहम होती हैं, या रजुलू तो अलिफ लाम उससे हट जाता है। और अगर अलिफ लाम लाना हो तो फिर कहते हैं अय्युहा, अय्युहा कहते हैं, अय्युहन नासु। अब नास से पहले क्या है, अलिफ लाम लगा हुआ है ना, और उससे पहले अब या नहीं आया, क्या आया? या अय्युहन्नासु, है ना, या के बाद अय्युहा आया है, या तो आया लेकिन अय्युहा उसके बाद आया, फिर जो है वो अन्नास कहा गया, या अय्युहन्नासु। तो क्या बात हमने सीखी यहाँ पे कि अगर मनादा पर अलिफ लाम लाना हो तो या के साथ अय्युहा का इजाफा करते हैं, या अय्युहन्नासु। मसलन आप कहती हैं या अब्दुल्लाह, है ना, या अब्दुल्लाह, तो अल्लाह इलाह था ना, तो उससे पहले अलिफ लाम आया और उससे पहले यहाँ पे अब्द मजाफ का इजाफा है ना, तो या अब्दुल्लाह क्या है, अल्लाह का बंदा। और आप एक बात और याद रखें, वैसे अगर या ना होता ना तो ये अब्दुल्लाह था, तो अब या अब्दुल्लाह जबान पे भारी है, तो या अब्दुल्लाह, आपके जहन में ये भी सवाल पैदा होता होगा ना, अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह ऐसे क्यों हो जाता है, तो या की वजह से अब्दुल्लाह जो है वो अब्दुल्लाह बन गया। दुआ के मौके पर लफ्ज जो है अल्लाह के साथ हम हुम्मा का भी इजाफा कर लेते हैं, अल्लाहुम्मा, है ना, बस। तो अच्छा, इसके अलावा या के अलावा भी कुछ हुरूफ हैं जो हरफ निदा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऐ, आ, हया, हया जैसे आप कहें, हाथ दो चश्मी, फिर या उसके साथ हया, फिर अय्या। तो या जो है ये मनादा करीब और बईद दोनों के लिए आता है, लेकिन अया और हया ये सिर्फ बईद के लिए और ऐ और आ सिर्फ करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कहती है ना कि आप मनादा मनादा के से पहले अगर या आ जाए, जैसे रब का रब भी आना चाहिए ना, मेरा रब, आप उसको पुकार रहे हैं, लेकिन अगर या लग गया है तो याए मुतकल्लम गिर जाएगी, या रब, आपको रब के नीचे की जेर बता रही है कि इसके साथ या थी, और या जो है रब्बी की या, मेरा रब, याए मुतकल्लम ये गिर गई है, तो या रब्बी, दरअसल या रब्बी था। और फिर आप देखिए कि जो है वो या आदमुस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, तो इसमें आप बता सकती हैं कि मुनादा कौन सा है, गलत हो गया, आदमु है ना, या क्या है, हर्फ निदा है, आदमु क्या है, मुनादा है। तो आप ये बात जो है वो याद रखें, क्योंकि इसी तरह थोड़ा थोड़ा भी समझेंगे तो याद होने लगेगा और समझ आने लगेगी। तो ये मुनादा है या आदमु, क्या है मुनादा, आदम, क्योंकि हम आप उनको उनसे बात हो रही है ना। इसी तरह आप मुझे बताइए कि अगली ये आयत है सूरत लुकमान की, इसमें हर्फ निदा कौन सा है और मुनादा कौन सा है, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, आप सब नहीं बोले, पहले मुझे बताएं, सब मिलकर बताएं हर्फ निदा कौन सा है, या मुनादा कौन सा है, बुनैया, शाबाश, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर आप देखिए कि ये भी जो है वो अहम है कि बाज़ औक़ात जो मनादा होता है ना वो मजाफ की शक्ल में आता है। मजाफ के मानी क्या होते हैं, मजाफ मजाफिल है, ये इसम, दो इसम मिलते हैं ना, तो दो इसम मिलने की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, कभी वो मरकबे तौसीफी बनकर मिलते हैं जिसमें एक दूसरे की सिफत बयान की जाती है ना, है ना, रजलुन सालेहुन, और कभी जो है ये इस तरह से मिलते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, ये अब्द जो है मजाफ है और अल्लाह जो है वो मजाफिल है, दोनों इस्म ही होते हैं, मुरकबे तौसीफी में भी दोनों इस्म होते हैं और मुरकबे इजाफी जो है इसमें भी दोनों इस्म होते हैं, लेकिन मुरकबे जो इजाफी होता है ना इसमें एक की नस्बत दूसरे की तरफ दी जाती है। मसलन आप कहती हैं कि बैतुल्लाह, बैत मजाफ है और अल्लाह जो है मजाफिला है, मजाफ मजाफिला का ये होता है पहले का नाम मजाफ रख दिया गया है, अरबी का जो लफ्ज होता है ना, पहला मजाफ है दूसरा मजाफिला है, ठीक है। तो इसी तरह आप कह सकती हैं मजाफ अलह के लिए, आप खुद से भी कोई मिसाल जो है वो दे सकती हैं कि आप तो अभी हम आप कुरान पढ़ेंगी आप देखती जाएंगी कि एक नहीं بےشمار مضاف جو ہیں مضاف مضاف علیہ یعنی مرکب توصیفی جو ہے وہ آتا چلا جاتا ہے, اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ آپ پڑھیں آپ سمجھیں اور پھر آپ کو کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ بڑی جلدی اس کی سمجھ جو ہے آپ اختیار کرنے لگیں گے, یعنی آپ کو اس کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے گی. اور آپ یوں بھی آپ کہہ سکتی ہیں باب البیتی, گھر کا دروازہ, باب کیا ہے مضاف ہے اور بیت کیا ہے مضاف الیہ ہے, تو مضاف الیہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے, مضاف پہلے آئے گا مضاف الیہ بعد میں آئے گا, اور عام طور پر اردو میں اس کا ترجمہ کرتے وقت جو ہے وہ الٹ ترجمہ کیا جاتا ہے, باب البیتی اب کیا ہے باب دروازے کو کہتے ہیں بیت گھر کو کہتے ہیں, تو گھر کا دروازہ, تو اب اردو میں گھر پہلے آ گیا دروازہ بعد میں اور بیچ میں کا کے کی آ گیا. مثلاً وقت الصلاتی, نماز کا وقت, تو وقت کیا ہے مضاف اور صلات کیا ہے مضاف ہے. تو بہرحال یہ تو ایسے چھوٹا سا ٹچ ہے, اسی طرح جیسے آپ نے مرکب توصیفی آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی, اسی طرح یہ مرکب اضافی, تو بہرحال یہ دونوں آپس میں کیا ہیں یہ اسم ہیں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی سورت یوسفی کی کہ یا صاحب یسجنی اے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد. تو اب یہاں پر جو ہے نا منادا مضاف کی شکل میں آیا ہے, یا صاحب یسجنی اے جیل کے ساتھیو, اب ایک نہیں ہے منادا, یا صاحبی کافی تھا نا, لیکن اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ بھی ہے مضاف کی شکل میں, یا صاحبی یسجنی اے جیل کے ساتھیو, تو کبھی منادا بڑا بھی ہوتا ہے, سمجھ آ گئی, کبھی ایک ہوتا ہے کبھی اس کے ساتھ وہ جس جگہ ہے اس کا بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. مثلاً یا ابن امہ لا تاخذ باللحیتی ولا براسی, اب اتنا ہی ہو سکتا تھا نا یا ابن اے بیٹے, لیکن یا ابن امہ اے ماں جائے اے ماں کے بیٹے, تو یہ مضاف کی شکل, سمجھ آ گئی آپ کو ماشاءاللہ سب سمجھ آتی جائے گی, لیکن دماغ کو کھولنا ہے اور اپنے ذہن کو یہ بات سکھانی ہے کہ یہ کچھ مشکل نہیں ہے, اس طرح آپ کو نا ترجمہ بہت اچھا کرنے لگیں گی. آپ شروع میں آپ کو اتنے پارے پڑھایا ایسے ہی پڑھایا, لیکن اب تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ تاکہ آپ کو ترجمے کی سینس میں آپ کے میں اضافہ ہوتا چلا جائے. تو اتنا ہی میرا خیال ہے کافی ہے کہ یا اباتی اے میرے ابا جان. تو اب میں یہاں پہ دو باتیں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یا کی وجہ سے تا کے بعد آنے والی یا متکلم گر چکی ہے, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, کیونکہ اصل میں تھا اباتی میرے ابا جان, تو یا اباتی اے میرے ابا جان, اور یا اب بھی ہو سکتا تھا ہے نا, لیکن جو ہے وہ احترام کے لیے کلام میں دلکشی پیدا کرنے کے لیے, اور ویسے بھی جو چیز زبان پر بھاری ہوتی ہے تو اس کو عربی زبان میں ہٹا بھی دیا جاتا ہے, تو یہاں پہ کیا ہے یہ بھاری بھی نہیں ہے یا اباتی, اچھا لگ رہا ہے نا. انی رأیت احد عشر, احد ایک کو کہتے ہیں عشر, دس کو کہتے ہیں, تو دس ایک گیارہ, کوکباً ستارے کو کہتے ہیں اور ستارے کو نجم بھی کہتے ہیں ہے نا, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ستارہ جو ہے مختلف ستارے ہیں, اور ستاروں کے لیے قرآن میں جو ہے وہ نجم لفظ استعمال ہوا ہے, اور تارک بھی ہے رات کو آنے والا ہے نا. تو جب آپ اب یاد کر رہی ہیں تو آپ نا یہ جو سملر ورڈز ہیں نا آپ اس کا فرق بھی ذرا یاد کرتی جایا کریں, تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہے وہ قرآن جب آپ پڑھتی جائیں گی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی کہ مختلف حروف جو ہیں وہ کب استعمال کیے گئے ہیں. تو کوکب, کوکب جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ شروع کرتی ہیں آپ پڑھتی ہیں تو اس میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے, ہاں وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ ستارے کو دیکھا. تو کوکب جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, تو یہ لفظ جو ستارے کے لیے جو روٹ ورڈ استعمال کیا گیا چار حرفی ہے, کاف و کاف با, اور ستارے کو بعض اوقات جو ہے تارا بھی کہتے ہیں نا, ہاں नहीं उर्दू में, क्योंकि अब हम तो इसको उर्दू में समझ रहे हैं ना, अरबी में तो कौकब ही है, कौकब। कौकब हम कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, इसके अंदर हरफे लीन भी है ना, कौकब है, कौकब। तो हरफे लीन की वजह से हम उसको थोड़ा सा जो है वो लंबा करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है, जैसे अरबी जबान में जब आता है ना तारिक, तारिक उस सितारे को कहते हैं जो रात के वक्त आता है। तुलू तो होता है, लेकिन कब तुलू होता है, रात के वक्त। वैसे तो बाज ऐसे सितारे होते हैं ना कि फौरन जल्दी ही आसमान पर जो है वो नजर आते हैं, और बाज ऐसे होते हैं कि वो इतनी जल्दी जो है वो नजर नहीं आते, देर से आते हैं। तो नजम जो लफ्ज है ना, नजम, नजम जो है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर दो मानी पाए जाते हैं। एक है जैसे बेतना नबातात, जिसकी स्टेम नहीं होती ना, प्लांट्स की जड़ी बूटियां, जाट झंकार, हाँ उसके लिए भी कहते हैं। और दूसरा जो है सैयारे, जो तुलुओ गुरूब होते हैं और इसकी जमा नजूम आती है। नजम का आप ये बात याद रखें, ये बतौर इस्म जिन्स के इस्तेमाल होता है। अभी नजमी हम यह तदून, और लोग रास्तों सितारों से रस्ते मालूम करते हैं। सूरत नंबर 16 और आयत नंबर भी 16 दलील के लिए। और कवाकिब कौकबतुन एक बड़े सितारे का नाम है। कौकब हर बड़े तारे को कहते हैं, खा वो सितारा हो सैयारा हो, लेकिन हो वो बड़ा, बड़ा होना, लोहे का चमकना दमकना, चिम चिम करना। हम तो उर्दू में कहते हैं ना चम चम करना, सही तलफ्फुज है चिम चिम करना। कौकब हर उस तारे को कहते हैं जो बड़ा भी हो और फिर चम चम भी कर रहा हो, यानी चिम चिम ताबनाक भी हो, रोशन भी हो। हाँ, तो कौकब कौन सा सितारा, बड़ा और चमकदार। आप इसको ना ऐसे मुख्तसिर करके लिख सकती हैं, कौकब बड़ा प्लस चमकदार। और इसी तरह जो है वो शेरा एक चमकदार सितारे का नाम है। वह अन्नहू व रब्बु शेरा, हाँ ये सख्त गर्मी के मौसम में तुलू होता है। और जब जमाना जाहिलियत में ना लोग इसकी पूजा करते थे, उनका ये एक बुत था। और इसी तरह खुन्नस, पीछे हटना, सुकड़ जाना, सीधा चलते चलते एक कदम पीछे हट जाना, आंख बचाकर या चोरी छुपे पीछे हट जाना। तो खुन्नस जो है ना, हाँ ये भी सैयारों को कहते हैं जो सीधे चलते चलते उल्टी चाल चलने लगते हैं। इसी तरह जवार, जौरन, ये जो है वो सैयारे जो सीधी चाल चलते हैं, चलते ही रहते हैं, कभी कभी थोड़ा सा रुख बदलते हैं लेकिन चलते रहते हैं। और इसी तरह कुन्नस, कुन्नस जो है छुपते हैं, गायब हो जाते हैं, जैसे हिरन नहीं है नजर आता है फिर गायब हो जाता है। फले उकसिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, तो खुन्नस भी सैयारों के लिए है, और उसके अलावा जो है जवार, जवार क्या है, ये भी सितारों के लिए है कि चलते जाते हैं। और कुन्नस भी जो है वो चलते तो हैं लेकिन छुप भी जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं, चलते चलते यकदम यकायक गायब हो जाते हैं, नजर आया फिर गायब हो गया। तो बहरहाल मारूफ नजम कवाकिब जो है, आप इसको भी याद रख ले तो बहुत है। तो उन्होंने देखा सितारे को, व शमसा और सूरज को, वल कमरा और चांद को। फिर आप देखिए कि या बुनैया, ए मेरे बेटे, या बुनैया जो है असल में था क्या, या इब्न था, शाबाश, या इब्न था, और हमजा बानून इब्न, तो इब्न से बुनैया क्यों हो गया। ये जो है वो आप यूं समझ लें कि ये तस्गीर है, इसको छोटा कर लिया गया है। बाज़ुकात जैसे किसी का कलाम में हुसन पैदा करने के लिए भी और अपनाइयत का इजहार करने के लिए, जैसे निक नेम नहीं होते, लोग एक नेम बना देते हैं उसे, तो उसी तरह से है ये इब्न से या बुनैया। रोया का, रोया का रूपट क्या है, रा हमजा या, और रा का मतलब होता है देखना, और ख्वाब के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इखवाती का इसका असल क्या था, हमजा खा वो, वैसे तो अखू और अखुन। तो आप देखें यहाँ पे बाप का जिक्र आ गया, बेटे का आ गया, और फिर भाई का आ गया। फयकीदू इसका रूटवर्ड क्या है,
कैफ
यादा, ये खुफिया तदबीर को कहते हैं, जो छुपी हुई ट्रिक होती है ना उसको कहते हैं। और पीछे कुरान के लिए आया था किताबिल मुबीन, यहाँ पे अदुव मुबीन शैतान के लिए आ गया। कि शैतान बड़ा वाजे खुला दुश्मन है ना, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है। यजतबी का जीम बा वो भी ये आता है और या भी आता है। और आप ना ऐसे लिखा करें, जब लिखती है ना, देखें जीम बा के बाद लाइन लगाएं, ऊपर वो लिखे नीचे या लिखे, उसका ये आपको फायदा होगा, आपको याद रहेगा कि जीम बा के बाद कभी वो आ सकता है कभी या, यानी दोनों तरह ही इसका रूट वर्ड ठीक है। समझ आई बात की? और इसके मानी होते हैं जवाब, जवाब, तालाब, इसी तरह पहुंचाना, इसी तरह इज्तबा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम क्या है, मुजतबा, चुन लेना। अच्छा, इसके अंदर ना दो मानी पाए जाते हैं, किसी चीज को जमा करना फिर उसे कहीं ले जाना। तो आप क्या कैसे लिखेंगी, जमा प्लस ले जाना, तो उसे कहीं ले जाना। और यूं भी कहते हैं युजमाऊ व युहमल, ये जमा किया फिर उसको ले गए। तो क्या मतलब है कि आपको वो चीज इतनी पसंद आई, वो उसको आपने पहले इकट्ठा किया फिर आप उसको उठा कर ले गए। आप जैसे चुनती नहीं है किसी चीज, जैसे फ्रूट, सब्जी, फल, आप दुकानों पे जाती हैं तो क्या करती हैं, सारे लगे हुए होते हैं, आप उसमें से देखती हैं कि मुझे कौन सा लेना है, आप उसमें से चूज करती हैं, उठाती हैं, चुनती हैं। तो ये है इसके मानी कि किसी उम्दा चीज का इंतखाब करके उसे अपने करीब कर लेना, जमा कर लेना, फिर उसको जो है वो ले जाना, तो मुजतबा। अच्छा, इसके अलावा आपने ये जो चुन लेना, इसके लिए पहले और लफ्ज भी पढ़े थे, मुस्तफा है ना, इस्तफई, इस्तफई तू, हाँ, और सफा, तो उसका चुनना क्या है, पाकीजगी की बिना पर चुनना, जो मुस्तफा है ना, पाकीजगी और तहारत की बिना पर चुनना। इसी तरह इख्तार, मुख्तार है ना, खैर, हर वो चीज जो सबको मरगूब हो। अब आगे भी सूरत यूसुफ में आप पढ़ेंगे आयत 54 में के इस्तखलस के, फिर वो अजीज मिस्र कहता है कि मैं इसको इसको जो है ना मुंतखिब कर लेता हूँ, चुन लेता हूँ, किसी मकसद के लिए किसी चीज का इंतखाब करता। तो हम दोबारा एक चीज को क्यों रिपीट कर रहे हैं कि मुस्तफा पाकीजगी की बिना पर चुनना, मुजतबा जो है उसकी उम्दगी की बिना पर चुन लेना, और मुख्तार या इख्तारा जो है किसी मकसद के लिए किसी शय का इंतखाब करना। फिर इसके बाद जो है आप देखिए कि वयुअल्लिमुका, एक होता है आइन लामीम, इल्म सिखाना, आगाही देना, और अल्लामा है ना, तो यहाँ पे है युअल्लिमु, तो तालीम देना। इसके अंदर जो है अल्लामा युअल्लिमु तालीम जो है, इसके मानी है कि थोड़ा थोड़ा देना और पक्का देना। आप देखें कि कभी जो है एक ही दिन बहुत सा लेक्चर दे दिया जाए, किताब 2-3 दिन में खत्म कर दी जाए, इसका मतलब है जस्ट इंफॉर्मेशन पास की है। और एक ये है कि थोड़ा 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 करके साल में, 2 साल में, 3 साल में आप कुरान को पढ़ते हैं, इसका ये मतलब है कि सहज पके सो मीठा हो, कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो इंफॉर्मेशन या इल्म हासिल हुआ है वो साथ साथ आपके अमल का हिस्सा बन रहा है, पुख्ता पुख्तगी आप उसमें हासिल करते जा रहे हैं। तो आप ये बात याद रखें कि ये जो है ना, इसका बाब जो अल्लामा युअल्लिमु तालीम, इसके अंदर दो मानी खास तौर पे पाए जाते हैं। एक तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करना, और दूसरा ये है कि मजबूती के साथ पक्का करना। ठीक है, तो तालीम, तालीमुल कुरान, कुरान का इल्म देना, कुरान की तालीम सिखाना, तावील अहादीस, तावील, हमजा वौलाम, और वो जो है ना आल, आल औलाद, उसका भी यही रूट वर्ड है, अव्वल पहला, उसका भी यही रूट वर्ड है, इसी तरह ऊला दुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, ऊला वल आखिरा, तो ऊला का भी यही रूट वर्ड है, ऊला पहले के लिए ना। तो अव्वला किसी चीज को उसके अंजाम की तरफ लौटाना, ताबीर बताना, ख्वाब का अंजाम बयान करने के लिए ये लफ्ज जो है वो मखसूस है। अब क्या मानी है इसके, के किसी चीज को इसकी गायत या अंजाम की तरफ जो है वो लौटाना। कोई और ख्वाब के, ख्वाब भी हो सकता है, उसके अलावा भी कोई बात हो सकती है कि आप जो बात देख रहे हैं फिर आप उसकी एक ताबीर बताते हैं। वैसे तो अबारा जो है इसके मानी क्या होते हैं, किसी वादी या नहर को पार करना, अबूर करना, इबारत तो रोया है ना, तो ख्वाब की पूरी बात को पार करके आप उसकी तह तक पहुंच गए और आपने उसकी एक ताबीर बता दी। तो तावील अहदीस बात, किसी चीज का वाकया होना, नई चीज का पेश आना, युतिमु तामीम मीम पूरा करना, किसी चीज का के उसके हद तक पहुंच जाने के हैं जिसके बाद किसी और खारजी चीज की जरूरत ना रहे, जैसे युतिमु पूरा करना, मुकम्मल कर देना एतमाम के साथ। और इसका ऑपोजिट है नक्स, ये गिनती पूरी करना उसके लिए भी आता है और मिकदार पूरी करना उसके लिए भी आता है। याकूब, याकूब का रूटवर्ड क्या है? आइन काफबा, अकब, आकबत है ना, पीछे पीछे आने वाला। फिर आप देखिए कि अबावई का जो है इसकी खास बात क्या है, तुम्हारे जो है वो बाप दादा बुजुर्ग उसके लिए ये इस्तेमाल किया गया है। और आप देखें कि याकूब अलैहिस्सलाम, फिर उनके पीछे देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, इसहाक अलैहिस्सलाम, तो ये सारे इनके बुजुर्गों में इनका शुमार होता है। फिर आप देखिए कि लिसाइलीन क्या रूटवर्ड है? सीन हमजा लाम। फिर है अहब्बू हा बाबा, ज्यादा जो है वो महबूब। और अबीना, ये अबू था इला की वजह से अभी आ गया, इला ने उसके नीचे जो है वो उसको जरी हालत में कर दिया है। उस्बा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐन स्वाद बा मजबूत पट्टे, जो कहते हैं ना मेरे असाब बड़े कमजोर हो रहे हैं, तो क्योंकि पट्टे जो हैं वो क्या करते हैं, तो गोश को हड्डियों को मजबूती से पकड़ लेते हैं ना, तो उस्बा 5 से लेकर 10 तक की जमात के लिए बोला जाता है अरबी जबान में, 5 से 10 तक की जमात, क्योंकि वो मजबूत एक जमात होती है। अब आप देखें दलाली मुबीन आ गया, यहाँ पे दलाल आ गया, पीछे आपने गाफिल पढ़ा था ना, यहाँ पे दलाल पढ़ लिया। तो आपको पता है कि दलाल के एक मानी गुमराह के होते हैं, एक मानी होते हैं नवाकिफ राह, जैसे जिसको जिस किसी बात का पता ना हो। फिर है अवितरहू, तो यहाँ पे उक्तुलू जो है ये रूटवर्ड है, मतलब ये भी ऑर्डर का सीगा है। उक्तुलू का रूटवर्ड काफ ता लाम है, और अवितरहू इसके ता तोए राहा फेंकना, किसी चीज को फालतू और रद्दी समझ कर फेंकना। एक होता है ना आप फेंक देती हैं, लेकिन किसी को बिल्कुल फालतू और रद्दी समझ कर फेंकना, और इसके अंदर ये चीज भी आती है कि लोगों की नजरों से बचा कर कहीं दूर फेंकना, जैसे आप गार्बेज फेंकती हैं, कूड़ा क्रिकेट हम फेंकते क्या करते हैं, हम उसको अब समझ लेते हैं कि अब ये तो बिल्कुल ही गार्बेज ही हो गया, रद्दी हो गया, और उसको लपेट लपाट कर हम चाहते हैं कि दूर साइड पर करके कहीं फेंक देना। तो ये इसका इसकी यानी फेंकना तो है, लेकिन रद्दी समझकर, फालतू समझकर, लोगों की नजरों से बचा कर कहीं दूर फेंकना। यखलू, आप याद है किसी को, ये यखलू आपने पहले भी पढ़ा था, खालाम वो शाबाश वाइजा खलऊ इला शयाती नहीं सूरत अल बकरा में, अलग होना, इसी से तखलिया भी है ना, तखलिया चाहिए बात करने के लिए। वजहुन वैसे तो चेहरे को कहते हैं, तवज्जो भी इसी से है ना। फिर इसके बाद है कि काला कायलुन, क्या मादा है इसका? काफ वौलाम, कौल से है। गयाबतिल जुब्बी, गयाबा से इसका रूटवर्ड क्या है? गैन याबा, गैब, इल्मे गैब, गीबत, गायब होना। गीबत कब करते हैं? वो जो शख्स मौजूद नहीं होता ना उसकी बातें करते हैं पोशीदगी में, है ना, गायब, वो है ही गायब। इसी तरह जो है गयाबत, गयाबत किसे कहते हैं? के गहरा कुआं, अंधा कुआं, वो कुआं जो गायब है, उसका पानी नजर ही नहीं आता, उसका पता ही नहीं चल रहा ना। और जुब, जुब जो है कहते हैं कि वो कुआं जिसकी जो है मंडेर ना बनी हुई हो, और जुब जो है ये गहरे के लिए भी आता है। तो असल में गयाबतिल जुब, जुब उसकी सिफ्त के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हुआ है। यल्तकित हु लाम काफ तोए लुकता, ये इसके मानी होते हैं उठाना, यानी जमीन से किसी चीज का उठाना। और लुकता के अंदर दो चीजें जरूरी होती हैं, زمین پر گری پڑی چیز ہو اور دوسرا اس کا مالک معلوم نہ ہو. ایک جو ہے وہ زمین پر کوئی چیز گری ہوئی ہے, ادھر آپ کے پاس کسی کی یہ گھڑی گری ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس کا مالک پتا ہے, تو اس کو لکتا نہیں کہیں گے. تو لکتا اسے کہیں گے کہ ایک چیز گری پڑی ہے, اس کا مالک بھی نہیں پتا. ہاں, تو لکتا کہتے ہیں کہ لکتا جب ملے نا, تو کم از کم ایک سال تک اس کے مالک کا انتظار کرنا چاہیے. اچھا, پھر ہے بادو سیارتی. سیارتی سینیارا, سیر بھی اسی سے ہے کہ چلنے والے. سیارہ عربی زبان میں کار کو, گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ سیارہ. تو قافلے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تمنا, حمزہ میم نون, امانت رکھنا. اگر حمزہ کے اوپر فتح ہے نا, تو امانہ, امانت رکھنا. اور اگر میم کے نیچے زیر ہے نا فتح, تو دونوں پر ہوگا امینہ, اعتبار کرنا. تو یہاں پہ لا تمنا, یہ فعل نہیں ہے کہ تو ہم پر اعتبار نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو امنا امانت رکھنا, امینا اعتبار کرنا, لا تمنا تو ہم پر اعتبار نہیں کرتا. یہ اصل میں عین کلمے کی حرکت نا بدلتی جاتی ہے, کبھی ماضی مجھول اور مضارع اور امر اور نہیں میں بدل جاتی ہے. لیکن میں نے آپ کو سٹارٹ کی بتائی ہے بالکل, کہ امنا امینا, امنا امانت رکھنا, امینا اعتبار کرنا, لا تمنا تو ہم پر اعتبار نہیں کرتا. غدن کہتے ہیں کل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور گزرے ہوئے کل کے لیے امس, امس یسٹرڈے, اور ٹومورو کے لیے غدن, آج کے لیے الیوم. آپ کو یاد ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, سورت آل عمران آیت 121 میں آپ نے پڑھا تھا. ہاں, جب تو نکلا اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح سویرے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں. پھر ہے یرتا. یرتا جو ہے را تا عین, کھانا مزے سے کھانا, چرنا چگنا, اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یلعب لعب, لام عین با کھیلنا کودنا, اور لائبہ بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں کھیلنے کودنے والی, یہ کوئی اچھا ویسے نام نہیں ہے. زندگی میں اگر بچے کا نام آپ لائبہ رکھ دیں گے, وہ ویسے ہی کھیلتے رہتے ہیں, تو زندگی کھیل بن جائے گی, کیونکہ نام کے شخصیت پر جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ لا یحزننی, اور اسی سے ملتا جلتا سملر جو ہے مترادفات میں سے ایک لفظ آ رہا ہے, اخافو, ہے نا. تو لا یحزننی جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ حازانون. اور اخافو کا مادہ کیا ہے؟ خاوفا. دونوں میں فرق کیا ہے کہ حزن جو ہے وہ ایسے غم سے اس کا تعلق رکھتا ہے, حزن جو ماضی میں ہے, جو ماضی میں واقعات ہوئے اس پہ دل میں بڑی افسردگی ہے, تو آپ حزن و ملال میں ہیں. اور آنے والے مستقبل فیوچر کے بارے میں اگر غمزدہ ہیں تو کیا ہے؟ خوف. زیب, تو یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. زال حمزہ با کسے کہتے ہیں؟ بھیڑیے کو. پھر اس با آیا ہے, اور پھر ہے اس کے بعد آپ دیکھیے آئے 15 ہے, اور غیابت الجب آیا ہے. پھر ہے لا یشعرون, کیا مادہ ہے اس کا؟ شین عین را. کیا معنی ہے اس کے؟ بال کو کہتے ہیں, باریک سا بال, اور بال ہوتا ہی بڑا باریک ہے. ہاں, اور اسی سے شعور, ادراک اور شعور, جاننا, جیسے بال کی باریکی اسی طرح علم بڑا باریک ہوتا ہے نا, تو شعور حاصل کرنا. عشاءن, رات کا وقت, شام کا وقت, اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یبکون جو ہے وہ با کاف یا, رونا, اب کا رلانا, تو رات کے وقت جب وہ آئے تو روتے ہوئے آئے. پھر ہے نستبیکو, کیا مادہ ہے اس کا؟ سین با قاف. پھر ہے ترکنا, کیا مادہ ہے؟ تارا کاف. متعینا, میم تعین, متا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قمیص ہی ہے نا, تو قمیص کا لفظ جو ہے یہ کرتا, اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کا مسئلہ نہیں آپ کو ہوگا یاد کرنے میں, کیونکہ یہ آپ اردو میں بھی قمیص جو ہے وہ بڑی کثرت سے استعمال کرتی ہیں, اور ہم پہنتے بھی ہیں, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ویسے اصل بات کیا ہے کہ ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں, اس کا روٹ ورڈ ہے قاف میم سوات. پھر ہے سوالت, سین مولام, لٹک جانا, ढीला हो जाना और नफ्स का इस किसी चीज को खूबसूरत करके दिखाना जो वो करना चाहे, है ना। जैसे कोई बात बना लेना, एक बड़ी बात को नफ्स आसान करके बता दे, सब गलत। फिर है फसबरुन जमीर, हाँ, स्वाद बा रा, और सबर के मानी क्या होते हैं? ठहर जाना, रुक जाना, डट जाना। और सबर के लिए आपने और क्या पढ़ा था? तजीम क्या है? बर्दाश्त करना, तो वो भी सबर की एक किस्म है ना। हाँ, कि गुस्से को पी जाने वाले, बर्दाश्त करने वाले। और फिर हलीम, हिल्म, बुर्दबारी के जो है वो बहुत ज्यादा आपे से बाहर ना होना, कैसे भी हालात हैं इंसान उसको बर्दाश्त करता चला जाए। तो बर्दाश्त के ना तीन दर्जे हैं, पहला हिल्म है, दूसरा सबर है, और तीसरा कजामा है। और कजामा क्या होता है? ये सांस की नाली को कहते हैं, मुश्क को पानी से लबालब, मश्क को पानी से लबालब भर देना, फिर उसका मुंह भी बंद कर देना। कजीम मखजूम उस शख्स को कहते हैं जो गम या गुस्से से सांस की नाली तक भरा हुआ हो मगर उसका इजहार ना करे और उसे दबा जाए। और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वब यदत ऐनाहु मिनल हुज्नि फहुवा कजीम। और हजरत यूनस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, इज नादा वहुआ मखजूम। और सूरत आल इमरान में आप पढ़ चुकी हैं कि वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, है ना, मोमिनीन की सिफात भी। हाँ, काजमीन अल गैज, वहां आपने पढ़ा था पहली दफा। तो बहरहाल गोया के यहाँ पर सबर आया है, और आगे आप जो है वो कजीम जो है वो पढ़ेंगे। और जमील जी मीम लाम से है खूबसूरत, जमाल, हुस्नो जमाल, खूबसूरत चीज के लिए इस्तेमाल होता है। मुस्तान, ऐन मौनून, कब पहली दफा पढ़ा था? नस्तईनु, नस्तईनु, तसेफून, वाव स्वात्फा, वस्फ बयान करना। फिर है वारिदहुम, वारिदहुम वौरा दाल, आप पीछे ही पढ़ चुकी हैं। हाँ, प्यासे को भी कहते हैं, घाट को भी कहते हैं, वारिद होना, पहुंचना, है ना। तो फअदला, दा, दाल, लाम और अलिफ, आहिस्ता आहिस्ता कोई काम करना, दल्ला। और दलवा जो है दाल लाम वो डोल को कहते हैं। दलालत नहीं करना होता, तो वो है कि आप कोई काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, फिर वो दलीलों से दलालत करता चला जाता है कोई बंदा। और दलवा हूँ, दाल लाम वो। बुशरा का क्या रूपवट है? या बुशरा बाशीन रा। और बिदाता क्या रूपवट है? बादवाद आइन, चंद के लिए आता है। और बिदा समान, समान तिजारत, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है विसमानिन, यही इसका रूपवट है, सा मीमून, समन, कीमती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बख्सिन, बाखासीन, बख्सिन किसे कहते हैं? कमी करना, रद्दी चीज को भी कहते हैं, नुकसान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको बख्सिन याद रहेगा, पक्की बात है, चलो अच्छी बात है। बख्सिन दराहिमा मादूदतिन, दराहिमा दरहम के लिए सिक्का है, दिरहम की जमा दराहिम, मादूदा अदद से है। और जाहिदीन, जाहा दाल, जोहद से है।